कहीं ना कहीं सबका यही इरादा था, आज वे वंशिका को जिंदा जला डालेंगे, उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब आगे। लेकिन तभी डॉक्टर ने बोलना शुरू किया। जी नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं कि हम अरमान सिंघानिया का इलाज नहीं कर पाए, लेकिन इस लड़की ने, जिसने एंटीडोट बनाया था, उसने उनका इलाज कर दिया है और अरमान अब खतरे से बाहर है, और अब ठीक 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर उन्हें होश आ जाएगा। जैसे ही डॉक्टर ने ये बताया, सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इस वक्त वंशिका आस्था के बेहद पास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई भावनाएं नहीं थी। आस्था बड़े ही ध्यान से वंशिका के चेहरे को नोटिस कर रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम रहा था, किस तरह से वंशिका ने सीधे सीधे राजवीर जिंदल को गन पॉइंट पर ले लिया था। आस्था का दिल दिमाग जोरों से चल रहा था, वो कुछ सही से समझ नहीं पा रही थी। करीब करीब उसे सारी बातें तो पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो राजवीर जिंदल का वंशिका के साथ कनेक्शन के बारे में वंशिका से साफ साफ जानना चाहती थी। लेकिन ठीक उसी वक्त मारिया और टाइगर हाथ में गन लिए वंशिका की तरफ आए और उस पर गन पॉइंट करते हुए बोले, क्वीन, अब आप पीछे हट जाइए, इस लड़की को अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी किंग अब ठीक है, इसीलिए मैंने इसे कुछ समय तक इसकी सांसें उधार दी थीं, लेकिन अब इसके जाने का समय आ गया है। टाइगर की आंखों में वंशिका के लिए नफरत और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, और कहीं ना कहीं आस्था टाइगर के इमोशंस को अच्छी तरह से समझ रही थी। लेकिन तभी आस्था वंशिका की तुरंत आगे आकर खड़ी हो गई और बिना झिझक बोली, जब तक मिस्टर सिंघानिया को होश नहीं आ जाता है, वंशिका को कोई कुछ नहीं कहेगा, और तब तक वो मेरे साथ रहेगी। ये बोलकर आस्था ने वंशिका का हाथ पकड़ लिया और उसे वहां से लेकर जाने लगी। दादाजी, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान सभी लोग हैरानी से आस्था को देख रहे थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आस्था क्या करना चाह रही है। जबकि आस्था को ये पता चल चुका था कि अरमान खतरे से बाहर है, तो आस्था को अरमान के साथ होना चाहिए था, लेकिन आस्था तो वंशिका का हाथ पकड़कर वहां से बाहर चली गई थी। वहीं अबीर और अविनाश दोनों ही हैरानी से आस्था को जाते हुए देख रहे थे, और कहीं ना कहीं अविनाश इस वक्त आस्था के दिल की हाल समझ चुका था। बाकी सबके लिए तो आस्था एकदम से ही पहेली सी बन गई थी। दूसरी ओर रौनक फटाफट से अस्पताल के ही बने मंदिर के सामने पहुंच गई, और वहां जाकर वो भगवान जी का ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। रौनक ने आज तक कभी किसी मंदिर में कदम नहीं रखा था, लेकिन जब से अरमान पर जान पर खतरा मंडरा रहा था, तब से वो मंदिर के सामने से हट ही नहीं रही थी। फिलहाल वो भगवान जी का शुक्रिया अदा करने के लिए वहां जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो वहां गई, उसने देखा कि वहां तो पहले से ही आहान घुटनों के बल आंखें बंद किए प्रार्थना कर रहा था। एक पल को रौनक ने जैसे ही आहान को देखा तो आहान बड़ा ही प्यारा लगा था। वेल, कुछ देर बाद आहान को देखने के बाद रौनक भी आहान के ठीक बराबर में उसी तरह से आंखें बंद करके बैठ गई थी। वहीं आहान, जो आंखें बंद करके लगभग अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, खुश होते हुए मन में भगवान जी का शुक्रिया अदा कर रहा था कि अरमान अब खतरे से बाहर है। और जैसे ही आंखें खोलकर वो उठकर जाने लगा, उसने अपने ठीक बराबर में रौनक को देखा तो वो वहीं रुक गया। रौनक के बालों की कुछ लटें उसके गालों पर आ रही थीं। रौनक की आंखों में आंसू थे, रोने की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थीं। उस वक्त रौनक उसे बड़ी प्यारी, क्यूट सी, टेडी बियर जैसी दिख रही थी। आहान खोया हुआ सा रौनक को निहार रहा था। रौनक के बालों की लटें हवा से उड़ रही थीं, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थीं। वेल, आहान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक से थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने अपने होठों से रौनक के गालों को छू लिया। जैसे ही रौनक को अपने गालों पर आहान के गर्म सांस महसूस हुई, उसने तुरंत घबराकर अपनी आंखें खोली और तुरंत आहान को खुद से दूर धकेल दिया और खड़ी होकर गुस्से से उसे घूरने लगी। उंगली पॉइंट करके वो भड़कते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी थी मिस्टर आहान सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरा फायदा उठाने की? हाँ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बोलो, जवाब दो। रौनक की आवाज एकदम तेज हो गई थी। तभी आहान को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, और वो रौनक से माफी भी मांगना चाहता था कि उसने उसे बिना परमिशन के किस किया था। लेकिन जिस तरह से रौनक ने एटीट्यूड के साथ थोड़ी तेज आवाज में उससे बात की, अब तो आहान का भी पारा चढ़ गया और वो अपने आसपास देखने लगा। कुछ वार्ड बॉय, नर्स उन्हें ही नोटिस कर रहे थे, इसीलिए आहान वहां पर अब कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने सीधा रौनक का हाथ पकड़ा और उसे हॉस्पिटल के खाली पड़े एक वीआईपी वार्ड में ले गया। वहीं दूसरी ओर इस वक्त ध्रुव, सुमित, आकाश, दादाजी, एंजल, राधिका, देव, रश्मि सभी के चेहरे पर परेशानी के भाव तो थे, सिर्फ और सिर्फ आस्था के बर्ताव को लेकर, लेकिन साथ ही साथ सभी इस बात से खुश भी थे कि चलो अब अरमान की जानब खतरे से बाहर है, तो कहीं ना कहीं सभी थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे थे। और वहीं रश्मि, ध्रुव ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वायरस का एंटीडोट अरमान को लग चुका है तो कुछ ही घंटे में अरमान को होश भी आ जाएगा। और सभी को इस बात का डर सता रहा था कि अरमान होश में आने के बाद सीधे सीधे आस्था के बारे में पूछेगा तो वे लोग उसे क्या जवाब देंगे, क्योंकि आस्था तो बिना किसी को कुछ बताए वंशिका का हाथ पकड़कर वहां से चली गई थी। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल जल्दी ही अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपनी मृत बीवी को उठाया और उसे फटाफट से कसकर गले से लगाया। कहीं ना कहीं एक पल को जब वंशिका ने उसके ऊपर गन तानी तो उसे अनजाना सा डर सताने लगा था कि शायद वो अपनी बीवी से अब दूर हो जाएगा। राजवीर जिंदल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बीवी से दूरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए अब उसकी आंखों के सामने बार बार वंशिका का चेहरा घूम रहा था और वो डेविल की स्माइल करते हुए मन में बोला, काफी सालों से राजवीर जिंदल ने किसी की जान नहीं ली है, लेकिन अब लगता है उस लड़की की जान लेनी होगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से राजवीर जिंदल पर बंदूक तानने की। कहीं ना कहीं राजवीर जिंदल वंशिका के बारे में सारी बातें जानकर उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्योंकि एक पल के लिए वंशिका ने राजवीर जिंदल को डरा दिया था। वेल, जल्दी ही राजवीर अपनी मृत बीवी को फिर किस करने के बाद उसे एक बार फिर से बर्फ के हवाले और कुछ केमिकल वगैरह लगाकर जल्दी ही अपने ऑपरेटर रूम में चला गया और वहां जाकर वंशिका की डिटेल्स चेक करने लगा। वहीं दूसरी ओर इशिका, दूसरी ओर आस्था वंशिका का हाथ थामकर उसे कहीं और नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ही पास में बने एक छोटे से पार्क में ले आई थी। वंशिका ने अपना सर झुकाया हुआ था। आस्था एक बार फिर वंशिका को पार्क की बेंच पर लेकर बैठ गई थी। इस वक्त वे दोनों इस तरह से बैठे हुए थे जिस तरह से वे मेडिकल कॉलेज के पार्क में पहली बार मिले थे। वेल, आस्था ने एक नजर वंशिका को ध्यान से देखा। वंशिका का पूरा चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे से देखकर साफ पता चल रहा था कि अरमान को जहर देने के बाद वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तब आस्था ने वंशिका की ओर देखकर सीरियस लुक देते हुए सिर्फ एक ही सवाल किया, मैं सिर्फ तुमसे ही जानना चाहती हूँ कि तुमने राजवीर जिंदल पर बंदूक क्यों तानी थी। आस्था का सवाल सुनकर वंशिका पूरी तरह से चौंक गई और उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसे तो लगा था कि आस्था वंशिका से ये सवाल करेगी कि उसने उसके पति को इस तरह से इतना खतरनाक वायरस क्यों दिया, वो उसके पति की जान क्यों लेना चाहती थी।
लेकिन ये क्या, यहाँ तो वंशिका से आस्था सीधे सीधे तरीके से उसे ये पूछ रही थी कि उसने राजवीर जिंदल पर बंदूक क्यों तानी। अब वंशिका की आंखों में कन्फ्यूजन देखकर आस्था शांत स्वर में बोली, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे ये पूछूंगी कि तुमने अरमान जी की जान लेने की कोशिश क्यों की? लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने राजवीर जिंदल की जान लेने की कोशिश क्यों की? अब वंशिका ने एक नज़र आस्था के सपाट चेहरे की ओर देखा और अगले ही पल बिना किसी इमोशंस के बोली, क्योंकि राजवीर जिंदल ने मेरी ज़िंदगी अरमान सिंघानिया के हाथों बर्बाद की है। अब आस्था के एक्सप्रेशन काफ़ी हद तक बिगड़कर खतरनाक हो गए थे। कहीं ना कहीं वंशिका को आज पहली बार आस्था से अनजाना सा डर लग रहा था। वंशिका को लग रहा था उसने अरमान सिंघानिया के बारे में उल्टी सीधी बातें की है, शायद इसीलिए आस्था के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। उसे इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि राजवीर जिंदल के बारे में सुनकर आस्था का मूड खराब हो रहा था। वेल, आस्था ने अचानक अपनी आँखों को कसकर बंद कर दिया और अपनी लाल आँखों से वंशिका की ओर घूरते हुए बोली, वंशिका मैं तुमसे पहेलियाँ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे सीधे सीधे तरीके से सच बताओ, कब और कहाँ क्या हुआ था? अब वंशिका ने भी गहरी सांस ली और वंशिका समझ चुकी थी कि अरमान सिंघानिया पर हमला करके वो अपनी ज़िंदगी की मौत के कागज़ों पर ऑलरेडी पहले ही साइन कर चुकी है। तो इस तरह से अगर आस्था को एक बार वो सच बता देगी तो हो सकता है उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाए, क्योंकि आज तक वंशिका इस सच को लेकर घुटते हुए आई थी। वंशिका की ज़िंदगी में तो कोई नहीं था, परिवार के नाम पर आस्था के पास कम से कम उसकी नानी माँ तो थी। वेल, तभी वंशिका ने गहरी लंबी सांस ली और बचपन में जो कुछ भी हुआ था, किस तरह अस्पताल में पहुंचे थे, वो सारी बातें उसने जल्दी ही आस्था को एक एक करके बता दी थी। अब तो आस्था के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। ये सुनकर कि अरमान ने इतनी कम उम्र में इस तरह से एक खून किया था तो उसकी तो सांसें थम सी गई थीं। आस्था को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई उसका पति इतना बड़ा वहशी होगा, वो भी राजवीर जिंदल के जैसा। ऑलमोस्ट इन द लास्ट वंशिका सारा सच बताते बताते फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी आस्था अचानक उठ खड़ी हुई और उसने वंशिका को गले से लगा लिया और दो से तीन बार उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत होने के लिए कहने लगी।